हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दूसरे स्कंद अध्याय 10 श्लोक संख्या 47, 48, 49, 50 और 51। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सहदुद्भवस्था न निरोधलीलया गृहीतशक्ति त्रितयाय देहिना अंतर्भवाय नुपलक्षवर्त्मने भूयो नमः सत् व्रजनिच्छदे सता असंभवाय खिल सत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पा रमहंस्य आश्रमे व्यवस्थितानां अनुमृक्यदाशुषे। नमो नमस्ते पुरुषा ऋषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठा यमुः कुयोगिना निरस्तसाम्या दिशये नराधसा स्वधामनी ब्र मणिरास्य ते नम किरात हुणा दपुरिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवनाकसादय येने च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यत्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्पणं लोकस्य सत्यो विदुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। प्रचोदिताये न पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सखीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रा धुरभूत् किलास्यत समीरिषीणा ऋषभा प्रसीदता भूतैर्महद्भिर्य इमः पुरो विभो निर्माय शेते यदमूषु पुरुष भुङ्क्ते गुणांशो दशषोडशात्मका सोलङ्कृषिश्च भगवान् वचांसि मे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय विधसे वपुर्ज्ञानमयं साम्यां यन्मुखं भुरुहासवं नारायणं नमस्कृत्य। आकृत्य नरं शैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिके। पञ्चतत्त्वात्मकं द्वेषं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं कुरुतु वाचारं पंगु लंघयते गिरं यत्कृपातमहं मन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। ग्रंथा श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। दूसरा स्कंद अध्याय 10 जिसका शीर्षक है भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। यहाँ शुकदेव गोस्वामी अत्यंत सुंदर रीति से भगवान के विषय में परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। आज हम श्लोक नंबर 47 से प्रारंभ करेंगे। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। परिमाणम च कालस्य कल्पलक्षण विग्रहम् यथा पुरस्तात् व्याख्यास्ते पाठ्यं कल्पमथो शृणु। परिमाणं च कालस्य कल्पलक्षण विग्रहम् यथा पुरस्तात् व्याख्यास्ते पाद्यं कल्पमथो शृणु। परिमाणं च कालस्य परिमाण बोलते माप यानी उसका मेजरमेंट। च भी काल मतलब समय का। कल्प लक्षण विग्रह कल्प मतलब भ्रमा का एक दिन। लक्षण मतलब लक्षण विग्रह मतलब रूप। यथा पुरस्तात इसके बाद व्याख्यास्ते मतलब बताया जाएगा। मतलब अभी मैं तुमको कुछ और बता रहा हूँ उसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगा काल का जो माप है उसके विषय में बताऊंगा। अभी क्या बताऊंगा पाद्यम कल्पम अथो श्रु। पाद्यम मतलब पाद्म नाम से कल्पम यानी एक दिन की अवधि अथो इस तरह शुरू। अब मैं तुमको पाद्म कल्प के विषय में बता रहा हूँ पहले उसको सुनो उसके बाद में दूसरा समय और उसका माप बताऊंगा। हे राजन आगे चलकर काल के स्थूल तथा सूक्ष्म रूपों की माप का उनके विशिष्ट लक्षणों सहित वर्णन करूंगा किंतु इस समय मैं तुमसे पाद्म कल्प के विषय में कहना चाहता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते ब्रह्मा के कल्प की वर्तमान अवधि वराह कल्प अथवा श्वेत वराह कल्प कहलाती है। यानी कि अभी जो कल्प चल रहा है ना उसका नाम है वराह कल्प या श्वेत वराह कल्प। उसको पाद्म कल्प क्यों बोलते हैं उसके लिए आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं क्योंकि जब विष्णु के उदर से निकले हुए कमल यानी पद्म से ब्रह्मा उत्पन्न हुए थे तो उस समय भगवान वराह के रूप में अवतरित थे। अब इसको वराह कल्प इसलिए बोलते हैं कि इस पर ही जब ब्रह्मा जी का उत्पन्न प्राकट्य हुआ था विष्णु भगवान की नाभि कमल से, उस समय वरा अवतार चल रहा था, मतलब वरा रूप में भगवान पृथ्वी पर अवतरित थे, इसलिए वरा कल्प को पद्म कल्प भी कहते हैं। और भगवान के प्रथम भागवत के प्रथम भाष्यकर स्वामी श्रीधर का अनुसरण करते हुए जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे आचार्यों ने इसकी पुष्टि की है। अतः ब्रह्मा के वराह कल्प तथा पद्म कल्प में कोई विरोधाभास नहीं है। अब यहाँ क्योंकि सुखदेव गोस्वामी पद्म कल्प के विषय में बता रहे हैं, तो श्रीला प्रभुपाद जी तो कह रहे हैं कि इसको पद्म कल्प भी कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए, पद्म से उत्पन्न हुए थे, और उस समय क्योंकि भगवान का वराह अवतार प्रकट हुआ था, इसलिए उसको वराह कल्प या श्वेत वराह कल्प भी कहा जाता है। अब इतना सुनने के बाद शौनक जो ऋषि हैं, वो सूत गोस्वामी से कहते हैं कि अब हमें विदुर और मैत्रेय जी के बीच सेंटर में जो वार्तालाप हुआ था वो हम सुनना चाहते हैं। तो शौनक मुनि सूत गोस्वामी से कहते हैं, यदा नो भवान सूत क्षत्ता भाग वतोत्तम चचार तीर्थानि बहवः त्यक्त्वा बन्धून् सुदुस्त्यजान्। यदाह नो भवान् सूत क्षत्ता भागवतोत्तमः चचार तीर्थानि बहवः त्यक्त्वा बन्धून् सुदुस्त्यजान्। शौनक उवाच, यानी शौनक मुनि ने कहा, यदाह नो भवान् सूत, यत मना जैसा आह मतलब आपने कहा था, नो अर्थात हमको, भवान यानी आप सूत, हे सूत गोस्वामी, क्षत्ता भागवतोत्तम, क्षत्ता मतलब विदुर, विदुर जी को कहते हैं, और भागवत उत्तम मतलब भगवान के श्रेष्ठ भक्त, चचार तीर्थानि बवह, चचार मतलब अभ्यास किया, तीर्थानि यानी तीर्थ स्थानों का, बवह यानी पृथ्वी पर, त्यक्त्वा बंधुन सुदुस्त्यजान, त्यक्त्वा मन त्याग कर, बंधु मन अपने संबंधी को, सुदुस्त्यजान मतलब त्याग कर पाना अत्यंत कठिन है। इस संसार में सबसे ज्यादा कठिन जिससे हम प्रेम करते हैं या जिस जो हमारे संबंधी हैं, बंधु हैं, उनको छोड़कर चले जाना, त्याग करना बहुत कठिन है। लेकिन जैसे सुत गोस्वामी को कहते हैं, आपने जैसे बताया था कि विदुर जी ने अपने सारे बंधुओं को त्याग कर वो चले गए थे, फिर उस उन्होंने क्या किया था, मतलब उसके बारे में आप मुझे बताइए। अनुवाद देखिए, सृष्टि के विषय में यह सब सुनने के बाद शौनक ऋषि ने सूत गोस्वामी से विदुर के विषय में पूछा, क्योंकि सूत गोस्वामी ने पहले ही उन्हें बता रखा था कि विदुर ने किस प्रकार अपने उन परिजनों को छोड़कर गिरह त्याग किया था जिनको छोड़ पाना बहुत दुष्कर होता है। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषि विदुर के विषय में जानने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, जिनकी भेंट विश्व के तीर्थ स्थलों की यात्रा करते समय मैत्रेय ऋषि के साथ हुई थी। आगे शौनक मुनि इसी बात को आगे बढ़ाते हुए और आगे पूछते हैं, वे कहते हैं, क्षत्तु कौशारवेस्तस्य संवादो ध्यात्म संश्रितः यद्वास भगवस्तस्मै पृष्टस्तत्त्वामुवाचः ब्रूहीनस्तदिदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितं बन्धुत्याग निमित्तिं च यथैवागतवान् पुनः क्षत्तु कौशारवेस्तस्य संवादोऽध्यात्म संश्रितः यद्वास भगवस्तस्मै पृष्टस्तत्त्वमुवाचः ब्रूहीनस्तदिदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितम् बन्धुत्याग निमित्तं च
यथैवागतवान् पुनः। शब्दात् क्षत्रु कौशारविस्तस्य, क्षत्रु कहते हैं विदुर जी को और कौशारवि यानी मैत्रेय जी को। तस्य मतलब उनका, संवाद मतलब उनके बीच में जो संवाद हुआ था, समाचार हुआ था। आध्यात्म संश्रिता, आध्यात्म मतलब दिव्य ज्ञान के विषय में, संश्रिता मतलब परिपूर्ण था। उन्होंने जो बोला होगा वो तो दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण होगा। यद्वा स भगवान तस्मय, यत्मन जो वामन अन्य कुछ समन वह भगवान यानी भगवान, तस्मय मन उससे, पृष्ठस्तत्वमुवाच, पृष्ठ मतलब पूछा था, तत्व मन सत्य उवाच उत्तर दिया था, मतलब विदुर जी ने क्या पूछा था और मैत्रेय ऋषि ने, आध्यात्म के विषय में जो ये चर्चा हुई थी उनके बीच में, उन्होंने एक दूसरे से जो बोला था, तस्मै निस्तद इदम सौम्य, तस्मै मतलब उससे, तत्त्वम मतलब पृष्ठ मतलब जो पूछा था और उन्होंने उवाच मतलब जो उत्तर दिया था कि ब्रूही, ब्रूही मतलब कृपा करके आप मुझे कहिए, आप हमें बताइए, न तत् इदम, न मतलब हमसे, तत् मतलब वे विषय सारे, इदम मतलब यहाँ, सौम्य हे सौम्य, विदुरस्य विदुर का विचेष्टितम अर्थात कार्यकलाप, बंधु त्याग मित्रों के परित्याग का, और निमित्तम कारण च भी, यथा एव, यथा मन जिस प्रकार, एव मन भी, आगतवान यानी घर वापस आया पुनः, फिर किस प्रकार से उन्होंने घर त्याग कर दिया था, वो बाहर चले गए थे तीर्थ स्थान में, और मैत्रेय ऋषि से जब उनकी भेंट हुई थी तो उन्होंने क्या क्या आध्यात्म के विषय में पूछा था और उन मैत्रेय ऋषि ने क्या जवाब दिया था, और फिर वो जब घर त्याग के गए थे तो वापिस से किस प्रकार फिर आए, का किस कारण से आए, ये सब पूछ रहे हैं। अनुवाद देखिए, शौनक ऋषि ने कहा, आप हमें बताइए कि विदुर तथा मैत्रेय के बीच आध्यात्म पर चर्चा हुई, विदुर ने क्या पूछा और मैत्रेय ने इसका क्या उत्तर दिया था, कृपा करके हमें यह भी बताइए कि विदुर ने अपने कुटुंबियों को क्यों छोड़ा था और वे पुनः घर क्यों लौट आए थे, तीर्थ स्थानों की यात्रा के समय उन्होंने जो कार्य किए उन्हें भी हमें विस्तार से बताइए। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि श्री सूत गोस्वामी संसार की सृष्टि तथा संहार की कथाएं सुना रहे थे, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि शौनक आदि ऋषि आध्यात्म विषय को, जो भौतिक विषयों से ऊंचे स्तर पर है, सुनने के लिए अधिक इच्छुक थे। अब वो संसार के बारे में बता रहे थे, क्या बता रहे थे, सृष्टि का संहार कैसे हुआ, किस तरह से सृष्टि उत्पन्न हुई, ये सब। लेकिन ऐसा लगता है कि शौनक आदि ऋषि जो थे वो पूछना चाहते थे कि आध्यात्म के विषय में जो सुखदेव विदुर जी ने जो मैत्री ऋषि से क्वेश्चन किए थे उसके बारे में जानना चाहते थे। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ये भौतिक विषय विषयों से ऊंचे स्तर पर है, सुनने के लिए अधिक इच्छुक, तो ऐसी चीजें सुनने के लिए वो सारे ऋषि ज्यादा इच्छा कर रहे थे। मनुष्य की दो श्रेणियां होती है, दो टाइप के लोग होते हैं, एक तो वे जो स्थूल देह तथा भौतिक संसार में अधिक लिप्त रहते हैं, और दूसरे वे जो उच्च स्तर पर रहने के कारण दिव्य ज्ञान के प्रति अधिक उत्सुक होते हैं। कुछ लोग को ना बस संसार की बातें अच्छी लगती हैं, कुछ संसार के बारे में, लोगों के बारे में, स्थूल चीजों के बारे में जानने की इच्छुक होते, बस संसार के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये संसार को नश्वर मानते हैं और संसार में कुछ भी घटित हो रहा होता है उनको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, वो ये सोचते हैं कि ये तो अभी संसार तो आना जाना, आज है तो कल ये परिवर्तित हो जाएगा, तो उन चीजों में उसको इंटरेस्ट नहीं होता, वो कैसे होते, उच्च स्तर पर रहने के कारण दिव्य ज्ञान के प्रति अधिक उत्सुक, वो दिव्य ज्ञान को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। श्रीमद् भागवत प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, चाहे वह भौतिकतावादी हो अथवा गुणातीत यानी आध्यात्मिकवादी हो। ये श्रीमद् भागवतम की स्पेशलिटी है। श्री प्रभुपाद जी बोलते श्रीमद् भागवतम जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वो भौतिकतावादी हो अथवा गुणातीत यानी आध्यात्मिकवादी हो, सुविधा प्रदान करने वाला दोनों को। लोग भागवत से भौतिक जगत के में तथा दिव्य जगत में भगवान के महिमा मंडित कार्यकलापों को सुनकर समान लाभ उठा सकते हैं कि संसार किस तरह भगवान बनाते हैं, किस तरह से प्रत्येक जीव की रचना करते हैं और किस तरह से पालन करते हैं, छोटे से छोटे जीव का भगवान ख्याल रखते हैं, उनके कर्मों के अनुसार उनको हर वस्तु प्रोवाइड करते हैं और फिर संहार हो जाता है, फिर इतने सारे ब्रह्मांड भगवान किस तरह से केवल सांस लेने से। तो ये जो भौतिक जगत में इंटरेस्ट लेते हैं उनके लिए, और जो आध्यात्मिक कार्यकलाप में इंटरेस्ट होते, तो दोनों भगवान के विषय में सुनकर समान लाभ उठा सकते हैं। भौतिकतावादी भौतिक नियमों एवं उनकी कार्य विधि में अधिक रुचि रखते हैं, वे भौतिक चकाचौंध में आश्चर्य देखते हैं, कभी कभी इसी चकाचौंध में वे भगवान की महिमा को भूल जाते हैं। उन्हें यह जान लेना चाहिए कि सारे भौतिक कार्यकलाप तथा आश्चर्य भगवान द्वारा ही प्रेरित हैं। उद्यान में गुलाब का फूल धीरे धीरे विकसित होकर रूप रंग ग्रहण करके सुंदर तथा सुरभित बनता है, वह किसी अंधाधुंध भौतिक नियम के अधीन होकर ऐसा नहीं करता, यद्यपि प्रतीत ऐसा ही होता है। इस भौतिक जगत नियम के पीछे परमेश्वर की पूर्ण रचना का निर्देशन होता है, अन्यथा वस्तुएं इतना नियमित रूप धारण नहीं कर सकती थी। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमको तो क्या दिखता है, एक गार्डन में एक सुंदर सा गुलाब का फूल खिलने से पहले एक छोटी सी कोंपल उठती है, उसमें एक छोटी सी कली खिलती है, धीरे 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 उसके पंख खुलते हैं और वो एक सुंदर गुलाब में परिवर्तित हो जाता। ये सब ऑटोमेटिकली नहीं होता है, ये इसके पीछे भगवान की सत्ता है, भगवान का हाथ है। वरना ये सारी चीजें, जो सारा संसार, ये प्रकृति में जो सब कुछ नियमित रूप से सूर्य उदय होता है, चंद्रमा होता है, फिर ऋतुएं बदलती हैं, किस प्रकार से वृक्षों में समय समय पर फल फूल इत्यादि खुलते, वो सब इतना नियमित रूप से इसीलिए हो रहा है क्योंकि भगवान की सत्ता है। कलाकार संपूर्ण मनोयोग और कलात्मक अनुभूति से गुलाब का चित्र बनाता है, किंतु तो भी वह असली गुलाब की तरह पूर्ण नहीं होता। यदि यह सत्य है तो हम यह किस तरह से कह सकते हैं कि असली गुलाब ने बिना बुद्धि के ऐसा सुंदर रूप प्राप्त किया। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बताते, कोई पेंटर हो, बहुत ही सुंदर पेंटिंग बना के अगर किसी पेपर में हमको दिखाए और पूछे ये खुद ब खुद बन गया तो आप यकीन करोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कुछ बना है तो जरूर कोई बनाने वाला भी होगा। उसी तरह से जब हम एक ड्राइंग पर भी ये यकीन नहीं कर सकते थे कि खुद ब खुद बन गया हो, तो ये सुंदर प्रकृति, वो तो उसने जो बनाया वो तो फिर भी आर्टिफिशियल रहेगा, उसमें वो वास्तविकता नहीं होगी, वो सुंदरता, वो कोमलता, वो सुगंध तो नहीं होगी। जब वो भी कोई खुद ब खुद नहीं बन सकता है, तो ये वास्तविक जो वस्तुएं हैं, जो प्रकृति में इतने सुंदर सुंदर फूल हैं, वो भला खुद ब खुद कैसे बन सकते हैं? श्री प्रभुपाद जी बोलते तो हम ये किस तरह कह सकते हैं कि असली गुलाब ने बिना बुद्धि के ऐसा सुंदर स्वरूप धारण किया? अल्पज्ञता के कारण ही इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। सृष्टि तथा संहार के उपर्युक्त वर्णन से हम यह समझना चाहिए कि सर्वव्यापी होने से परम चेतना प्रत्येक वस्तु का पूरा ध्यान रखती है भगवान प्रत्येक वस्तु का पूरा ध्यान रखते हैं, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं। परमेश्वर की सर्वव्यापकता का तथ्य यही है। निपट भौतिकतावादियों से भी बढ़कर मूर्ख व्यक्ति अपने को गुणातीतवादी यानी आध्यात्मवादी कहते हैं और अपने में सर्वव्यापी चेतना पाए जाने का दावा तो करते हैं, किंतु कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं करते। ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को यह भी पता नहीं चल पाता कि दीवार के उस ओर क्या हो रहा है, फिर भी वे परम पुरुष की सर्वव्यापी चेतना से अपने को समन्वित होने का झूठा गर्व करते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी श्रीमद् भागवतम का सुनना सहायक बनता है। इससे उनकी आंखें खुल जाएंगी और उन्हें पता चलेगा कि परम चेतना का दावा करने से ही कोई परम भावना से भावित नहीं हो जाता। इस भौतिक संसार में उन्हें प्रमाण देना होता है कि उन्हें ऐसी परम चेतना प्राप्त है, किंतु नैमिषारण्य के ऋषि कोरे भौतिकतावादियों तथा झूठे आध्यात्मवादियों से ऊपर थे। अब यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते, भौतिकतावादी कैसे होते हैं? वो समझते प्रत्येक जीव में भगवान है, हम भी भगवान की ही तरह है, मतलब प्रत्येक जीव जो है वो भगवान का अंश होने के कारण भगवान के समान है। श्री प्रभुपाद जी बोलते वो तो भौतिकतावादियों से भी ज्यादा बड़े मूर्ख है। तो फिर भी अगर वो भागवतम सुनेंगे तो उनकी आंखें खुल जाएंगी, उनको पता चलेगा कि परम चेतना का दावा करने से कोई परम नहीं बन जाता। उसकी जो सत्ता है, भगवान जो है वो वन एंड ओनली है, उनके जैसा और कोई नहीं। इसीलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं वो दावा तो करते हैं परंतु वो कोई भी प्रमाण नहीं प्रस्तुत कर सकते। ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को यह भी पता नहीं चलता चल पाता कि दीवार के उस ओर क्या है, मतलब उनको कुछ खबर नहीं पड़ती कि क्या है, फिर भी वो अपने आप को परम पुरुष की जो सर्वव्यापी चेतना है उसमें अपने आप को समन्वित होने का झूठा दावा करते हैं। महाराज, अगर कोई भी प्रकार के लोग होंगे वो यदि श्रीमद् भागवतम महापुराण को श्रवण करेंगे तो उनको वास्तविकता से का ज्ञान हो जाएगा। अब श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किंतु नैमिषारण्य के जो ऋषि थे वो कोरे भौतिकतावादियों तथा झूठे आध्यात्मवादियों से ऊपर थे, अतः वे अधिकारी व्यक्तियों से दिव्य विषयों की वास्तविक सत्यता जानने के लिए सदैव इच्छुक थे। वो वास्तविकता जानना चाहते थे, किससे? दिव्य व्यक्तियों से, क्योंकि उनको ये अपनी तरफ से कोई मेंटल स्पेकुलेशंस नहीं करने थे कि हम है ना परम पुरुष के समान हैं या हम गुणातीत हैं, वो नहीं। भगवान के विषय में जानना सबसे बड़ा ज्ञान है। भगवान कहते हैं वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो, सारे वेदों का मकसद मुझे जानना है। तो जो वास्तविक जो शुद्ध चेतना वाला व्यक्ति होगा वो केवल भगवान के विषय में ही जानने में ज्यादा उत्सुक होगा। अब सूत गोस्वामी जो है वो शौनक ऋषि को उत्तर देते हुए कहते हैं, और सूत गोस्वामी कहते हैं कि अब मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा जो राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा था और जो सुखदेव गोस्वामी ने बताया था वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि इसी से हमारा कल्याण होगा। तो आप कृपा करके उन्हें उस सबको जो भी मैं बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिए। सूत उवाच राज्ञा परीक्षिता पृष्ठो यदवो चिन्महामुनिः तदोभिदास्यै श्रुता राज्ञः प्रश्नानुसारतः राज्ञा परीक्षिता पृष्ठो यदवो चिन्महामुनिः तदोभिदास्यै श्रुता राज्ञः प्रश्नानुसारतः। सूत उवाच अर्थात सूत गोस्वामी जी ने कहा, उत्तर दिया राज्य परीक्षिता, राज्य मतलब राजा, परीक्षित द्वारा पृष्ठमना पूछे जाने पर यत उवोचत जो कहा किसने महामुनि यानी सुखदेव गोस्वामी तत्व अभिध्यास्य तत्मना वाबा त्व मना तुमको अभिदास्य का मतलब होता है अभी मैं तुम्हें बताऊंगा सुनो आप कृपा करके ध्यान से सुनो राज्य राज्ञा द्वारा राजा द्वारा प्रश्न अनुसारत सवाल के अनुसार जैसा जैसा उन्होंने प्रश्न किया वैसा वैसा उन्होंने उत्तर दिया अब मैं आपको बताऊंगा तो आप उसको सुनो अर्थात ध्यान से सुनो। सूत गोस्वामी ने बताया अब मैं तुम्हें वे सारे विषय बताऊंगा जिन्हें राजा परीक्षित के द्वारा पूछे जाने पर महामुनि ने उनसे कहा था कृपया उन्हें ध्यान से सुनो। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते प्रत्येक पूछे गए प्रश्न का उत्तर यदि किसी अधिकारी विद्वान का उद्धरण देकर दिया जाता है तो उससे बुद्धिमानों की तुष्टि होती है। अब क्योंकि परीक्षित महाराज ने जो कुछ सुखदेव गोस्वामी से पूछा था और उन्होंने जो उत्तर दिया था हालांकि शौनक कृष्ण ने क्या पूछा भाई विदुर और मैत्री ऋषि का संवाद बताओ लेकिन वो संवाद किसी का उदाहरण देते हुए कि वही बात जो आप मुझसे पूछ रहे हो वही बात परीक्षित ने सुखदेव से पूछी थी तो उन्होंने जो बताया था वही मैं बता रहा हूँ। तो अधिकारी विद्वान का उदाहरण दिया जाता है तो उससे बुद्धिमानों की तुष्टि होती है यहाँ तक कि न्यायालयों में भी यही विधि अपनाई जाती है। सर्वश्रेष्ठ वकील अपने मुकदमे की स्थापना के लिए बिना कोई कष्ट उठाए पूर्ववर्ती फैसले के साथ प्रस्तुत करता है यह परंपरा विधि कही जाती है और विद्वान अधिकारी इधर उधर के व्यर्थ तर्क ना देकर इसका ही पालन करते हैं। तो जो बुद्धिमान है वो अपनी बुद्धि से या दूसरी दूसरी बातों को नहीं बताते हैं बल्कि जैसा पहले के शुद्ध भक्तों ने उत्तर दिया है जो उदाहरण दिया है उसी की पैरवी करते हुए वो आगे इसी ज्ञान को बताते हैं और इसी विधि का पालन करते हैं। और आप श्री प्रभुपाद जी सबसे उत्तम अधिकारी के द्वारा भगवान की जो व्याख्या बताई गई है उसके विषय में कहते हैं जो कि ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में बताया ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम कि ईश्वर यदि कोई है तो कौन है वो तो बहुत सारे हैं पर ईश्वर परमा कृष्ण परम ईश्वर यदि कोई है जो सच्चिदानंद विग्रह है जो संपूर्ण जीवों का आदि है मगर उनका कोई आदि नहीं है समस्त कारणों का जो कारण है वो भगवान श्री कृष्ण है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की आज्ञा माने क्योंकि प्रत्येक वस्तु में उनका हाथ है। तो भगवान ने जो आदेश हमें दिया है श्रीमद् भगवत गीता में क्या आदेश दिया है मन मना भव मद भक्तो मध्याजिमाम नमस्कुरु मेरे भक्त बनो मेरी पूजा करो मुझे नमस्कार करो सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आओ मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर लूंगा तुम भय मत करो। तो हमारा क्या काम है हमें चाहिए कि परमेश्वर की आज्ञाओं को माने क्योंकि प्रत्येक वस्तु में उनका हाथ है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंध के अंतर्गत भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है नामक 10वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम सबका परम सौभाग्य है कि गुरु और गौरंग की असीम कृपा से आज हमारा श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंध संपूर्ण हुआ। ये बहुत बड़ी कृपा है गुरु महाराज की आप सबका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ इसी तरह रहे और हम कोशिश करेंगे अधिक से अधिक प्रयास करेंगे कि हम श्रीमद् भागवतम को अच्छे से समझ सकें, पढ़ सकें और अपने जीवन को धन्य कर सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने बहुत प्रेम और उत्साह से सुना। केवल आप सबका प्रेम, आप सबकी प्रार्थना और उत्साह के कारण ही मैं इन शब्दों को पढ़ के बताने के योग्य हो रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं, कोई गुण नहीं, कोई क्वालिटी नहीं है। ये सिर्फ आप सबकी प्रार्थनाओं का बल है, आप सबके आशीर्वाद का बल है कि मैं श्रीमद् भागवतम को श्रवण एज इट इज पढ़कर आप लोगों को सुना रही हूँ। इसमें मेरी कोई क्वालिटी नहीं, इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। सारा क्रेडिट गुरु श्रील प्रभुपाद जी का है, गुरु महाराज का है और भगवान की कृपा और आप सबके प्रार्थनाओं के बल से ये संभव है। तो कृपया आप अपनी ब्लेसिंग्स, अपनी प्रार्थनाएं इसी तरह मेरे साथ रखिएगा ताकि हम आगे भी इसी उत्साह के साथ श्रीमद् भागवतम को श्रवण कर सकें। हरे कृष्ण।